श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री राम कथा की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्य भगवान् व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरहन परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका इस राम कथा में स्वागत है। कल हम ये चर्चा कर रहे थे कि वाल्मीकि रामायण ये मूल रामायण है, अधिकृत रामायण है, अन्य कई रामायण भी हैं, परंतु उनमें से कोई अधिकृत हो सकते हैं और कोई नहीं। परंतु ये जितने भी रामायण हैं वो सब वाल्मीकि जी के रचना पर आधारित है। इसलिए राम कथा सुनने के पहले अवश्य हम वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनकी कृपा याचना करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा मात्र से ही श्री रामचंद्र भगवान की लीलाओं का प्राकट्य हमारे चित्त में भी हो सकता है। कल हम सुन चुके थे कि वाल्मीकि मुनि की तुलना एक सिंह से की गई है, जो कविता रूपी वन में विचरण कर रहे हैं। साथ साथ वाल्मीकि मुनि की तुलना एक ऐसे कोयल से भी की गई है जो कि कविता रूपी शाखा पर विराजमान है और जो बड़े मधुर ढंग से राम राम इन मधुर अक्षरों का कुंजन कर रहे हैं। तो प्रश्न ये उठ सकता है कि कोई व्यक्ति एक साथ में ही सिंह और कोयल दोनों कैसे हो सकता है। सिंह एक बहुत भयानक पशु होता है, सिंह को देख के मात्र हम सब घबरा जाते हैं, और कोयल की वाणी को सुनकर हम सब आकर्षित हो जाते हैं। तो क्या इन दोनों वर्णनों में कोई विरोधाभास नहीं लगता? इसका उत्तर ये है कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि जब वाल्मीकि जी राम राम कह के भगवान का गुणगान करते हैं, विस्तार में श्री रामचंद्र भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, तो ऐसे मधुर वाणी से, ऐसे दिव्य कथा से हमारा मन आकर्षित होता है। जिस प्रकार से कोयल के कूजने से हमारा मन आकर्षित होता है, क्योंकि ये वाणी भगवान से संबंधित है और वाल्मीकि मुनि जैसे एक कवि, एक दार्शनिक, एक शुद्ध भक्त, एक तपस्वी ये गीत गा रहे हैं, इसलिए ये अति मनोहर है, मनोरम है। हर एक व्यक्ति को ये बहुत ही रमणीय लगता है और आनंद से हम इस कथा का श्रवण करने के इच्छुक हो जाते हैं। इसलिए ऐसे वाल्मीकि मुनि जो कि कोयल के समान है, उनकी राम कथा सुन के हमारे मन में भगवान श्री राम के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो सकता है, और ऐसे श्रवण करते करते हमारे मन में श्री राम के प्रति भक्ति या शुद्ध प्रेम भी उत्पन्न हो सकता है। दूसरी ओर इस भौतिक जगत की तुलना एक जंगल से भी की गई है। जब हम किसी गहरे जंगल में बीच में खो जाते हैं तो बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं रहती है, चारों तरफ केवल घना जंगल ही दिखाई पड़ता है। ये है भौतिक सृष्टि की पहचान। ऐसे स्थान में भीतर जब सिंह, जो कि जंगल का राजा माना जाता है, वो गर्जन करता है तो जितने भी छोटे छोटे पशु होते हैं वो इधर उधर भाग जाते हैं डर के मारे। तो ठीक उसी तरह है जब वाल्मीकि मुनि जो सिंह की तरह है, परम तत्व, परम सत्य श्री राम और उनके नाम, लीला आदि का वर्णन करते हैं निडर होके, तो फिर हमारे हृदय के भीतर जितने भी पशु रूपी अनर्थ हैं, जैसे काम है, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य इत्यादि, ये सब दूर भाग जाते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि जब हम भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन करते हैं और उस संकीर्तन में हम तालियां बजाते हैं, तो उन तालियों की आवाज मात्र से हमारे हृदय में सारे अनर्थ दूर भाग जाते हैं। जिस प्रकार से एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर जब हम ताली बजाते हैं, तो वृक्ष की शाखाओं के ऊपर जो पक्षी होते हैं वो डर के मारे उड़ जाती हैं, तो उसी प्रकार से सिंह रूपी वाल्मीकि मुनि के रामायण की कथा का श्रवण करने मात्र से डर के मारे हमारे हृदय में जितने भी बुरी वृत्तियां हैं, बुरी आदतें हैं, बुरे विचार हैं, दुर्गुण हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। हमारे हृदय को छोड़कर कहीं दूर किसी स्थान में चले जाएंगे। दूसरे शब्दों में हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और भगवान श्री राम का स्वागत करने के लिए, भगवान श्री राम का निवास स्थान बनने के लिए एक योग्य और पात्र स्थान बन जाएगा। वाल्मीकि मुनि को नारद जी की कृपा तो प्राप्त हुई ही है, इसके बारे में भी हम कल सुन चुके हैं। नारद मुनि की कृपा से कितना बड़ा परिवर्तन हुआ वाल्मीकि जी के हृदय में, उनके चरित्र में, उनके जीवन में, उनकी विचारधारा में। तो ये होता है भगवान श्री हरि के भक्तों के संग का प्रभाव। जब हमारा संग किसी भक्तों से होता है तो हमें जान लेना चाहिए कि हम जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पे खड़े हैं, जहां से हमारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। अनेक जन्मों से हम तरह तरह के कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म लेते आए हैं, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में, कभी पृथ्वी में, कभी स्वर्ग लोक में, कभी नरक लोक में, और अनादि काल से ये जन्म मृत्यु का चक्र चलते आया है। लेकिन इस भवरोग को दूर करने के लिए, इस भव सिंधु से दूर होने के लिए नारद मुनि के जैसे कोई भक्त हमें मिल जाएं, नारद मुनि जी के प्रतिनिधि मिल जाएं, उनके चरण चिन्हों में चलने वाले ऐसे भक्त हमें मिल जाएं, तो हमारा जीवन भी धन्य और सफल हो जाएगा। तो एक ऐसा मोड़ है जो हमें शाश्वत जीवन की ओर, निरंतर आध्यात्मिक आनंद की ओर, भगवान के धाम की ओर ले जाएगा। तो नारद मुनि और वाल्मीकि जी, इन दोनों की जोड़ी एक आदर्श जोड़ी है। नारद मुनि जैसे गुरु और वाल्मीकि मुनि जैसे शिष्य, इन दोनों की जोड़ी बहुत परिपूर्ण है। जब वाल्मीकि जी का उद्धार नारद जी ने किया और बहुत बड़े संत बन गए वाल्मीकि जी, तो नारद जी ने वाल्मीकि से कहा कि अब मैं मेरे भ्रमण के लिए जा रहा हूं, अब आप तमसा नदी के तट पर जाकर अपना आश्रम बनाइए, वहां श्री रामचंद्र की कथाओं का वर्णन करिए, अपना भजन साधन वहां पर कीजिए। उस स्थान में जहां पे तमसा नदी गंगा जी से मिलती है, आज ये कानपुर शहर के पास में है ये स्थान जहां वाल्मीकि जी ने अपना आश्रम बनाया था। और जैसे वाल्मीकि मुनि वहां पर पहुंचे, एक छोटी सी कुटिया बनाई, वहां पर रहने लगे। शीघ्र ही उनकी तपस्या, उनका ज्ञान, उनके शुद्ध चरित्र आदि से प्रभावित होकर, आकर्षित होकर अनेक ऋषि मुनि जगह जगह से यहाँ पर आए वाल्मीकि जी का संग लेने के लिए। उधर इन ऋषि मुनियों ने, उनमें से जो गृहस्थ थे और जिनके बच्चे थे, उन्होंने बच्चों को, अपने पुत्रों को वाल्मीकि जी के हवाले कर दिया कि इन्हें आपका शिष्य बनाइए। वाल्मीकि मुनि के अनेक शिष्य हुए। वहाँ तमसा नदी के तट पर बड़े आनंद से एक रमणीय वातावरण में, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य इतना मनोहर था, वहाँ निवास करते रहे, अपने शिष्यों को पढ़ाते रहे। और एक दिन पुनः उनसे भेंट करने के लिए चले आए उनके गुरु नारद जी। अब नारद जी के बारे में दुर्भाग्यवश अनेक गलत धारणाएं प्रचलित हैं, विशेष करके कभी कभी सिनेमा, टीवी आदि में उनको अच्छी दृष्टि से नहीं दिखाया जाता। कई बार ऐसे लोक परंपरा में कहा जाता है कि वो कलह प्रिय हैं, सब जगह जागे झगड़े उत्पन्न करते हैं। ऐसे कई बातें नारद जी के बारे में कही जाती हैं और सुनी जाती हैं, परंतु ऐसा कहना नारद जी के बारे में ठीक नहीं है, बल्कि एक बड़ा अपराध हो जाएगा, क्योंकि नारद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। नारद जी भगवान के पार्षद हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, स्वयं भगवान द्वारा उनको शक्ति प्राप्त हुई है भक्ति की, और सारे ब्रह्मांड में वो बिना रुकावट के भ्रमण कर सकते हैं, उन्हें कहीं भी कोई नहीं रोक सकता और न रोकता है। किसी भी लोक में, किसी भी ग्रह में वो बिन बुलाए प्रवेश करते हैं और वहाँ उनका स्वागत होता है, चाहे पृथ्वी लोक में हो, स्वर्ग लोक में हो, ब्रह्म लोक में हो, वैकुंठ लोक में हो। नारद जी अपनी योग शक्ति के बल पर जगह जगह अपनी वीणा बजाते हुए भ्रमण करते रहते हैं, और वीणा के साथ साथ भगवान के नामों का उच्चारण करते रहते हैं। नारद जी अपने उदाहरण से सिखाते हैं कि किस तरह हमें संगीत का प्रयोग केवल भगवान के गुणगान के लिए करना चाहिए, संगीत का और कोई उद्देश्य नहीं है। परंतु आधुनिक काल में ये देखा जाता है कि भगवान का गुणगान करने के लिए संगीत का प्रयोग विरला ही किया जाता है। अधिकतर तो केवल लोग अपने मनोरंजन के लिए संगीत सुनना और सुनाना चाहते हैं, या तो केवल अपने तरह तरह के वासनाओं को तृप्त करने के लिए संगीत का आश्रय लेते हैं। और आजकल जो संगीत के नाम से जाना जाता है, वो ऐसे लगता है कि प्राय संगीत तो नहीं है, तरह तरह की ध्वनियां अवश्य हैं, परंतु वो माधुर्य, वो मिठास, वो आध्यात्मिक प्रेरणा, वो मन की शांति, हृदय का उल्लास आधुनिक संगीत से नहीं मिलता। परंतु श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि नारद मुनि को ये सप्त स्वर प्राप्त हुए, सारे गम पधनी, और फिर वो भ्रमण करते करते सब जगह प्रचार करते रहे। जहाँ भी नारद जी जाते हैं, भगवान श्री हरि का गुणगान करते हैं। वो जो भी कुछ करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि लोगों का कल्याण हो, भगवान का अवतार शीघ्र हो जाए, ताकि असुरों का वध हो जाए। जो साधु हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनकी रक्षा हो, भगवान की भक्ति सब जगह फैल जाए, यही एकमात्र उद्देश्य नारद जी का रहता है। हर आध्यात्मिक कला में, आध्यात्मिक ज्ञान में नारद जी प्रवीण हैं, निपुण हैं, इसलिए तो वो ऐसे जाने माने बड़े बड़े महाभागवतों के गुरु हैं। प्रह्लाद महाराज का नाम तो आप सबने अवश्य सुना होगा। प्रह्लाद महाराज को भी नारद जी ने ही उपदेश दिया था, जबकि प्रह्लाद जी अपनी माता कयाधु के गर्भ में थे। ध्रुव महाराज के गुरु भी नारद जी ही थे। वेदों के रचयिता व्यासदेव जी, इनके भी गुरु नारद जी हैं। और ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं जो हमारे इतिहासों में, पुराणों में, उपनिषदों में वर्णित हैं। और इन सब महाभागवतों ने नारद जी से दीक्षा ली, नारद जी से उपदेश ग्रहण किया, ऐसे वर्णन आता है। तो रामायण की रचना करने वाले वाल्मीकि जी भी नारद जी के ही शिष्य रहे। वैसे नारद ये शब्द भी महत्वपूर्ण है। र मतलब वो चीज जिसका नाश अवश्य होना है, न र मतलब वो वस्तु जिसका नाश कभी नहीं होगा, अर्थात जीव। और नार मतलब उस जीव से, उस सनातन जीव से संबंधित जो ज्ञान है उसको नार कहते हैं। और द शब्द आता है ददाती से, जो देते हैं। तो जो समस्त जीवों को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, दिव्य ज्ञान का अनमोल भेंट देते हैं, वो है नारद। नारद शब्द का और एक अर्थ है वो व्यक्ति जो समस्त बद्ध जीवों के अज्ञान के अंधकार का नाश करते हैं और उनको ज्ञान और भक्ति के प्रकाश में ले आते हैं। तो ये है नारद शब्द का अर्थ। तो नारद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और जगह जगह जाते हैं। जैसे इस समय वो व्यासदेव जी के पास आए और अभी वाल्मीकि जी के पास आए हैं। जब वाल्मीकि मुनि के आश्रम में वो आए तो वाल्मीकि जी बड़े प्रसन्न हुए, उठे, उनका स्वागत किया, एक योग्य स्थान दिया उनको बैठने के लिए। और फिर नारद जी से उन्होंने प्रश्न किए। अब वाल्मीकि मुनि का भाव भी एक योग्य शिष्य का था। जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि जब वाल्मीकि जी नारद जी के सामने आए तो बड़े नम्र स्वभाव से आए, ऐसे सद्गुरु के शरण में जाके हमें प्रश्न करने चाहिए, हमें ज्ञान स्वीकार करना चाहिए। इसलिए शास्त्र में कहा गया है तद विज्ञार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत। ऐसे आध्यात्मिक विज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें एक सद्गुरु के पास जाना चाहिए। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परच निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम। ऐसे भी भागवत में कहा गया है कि क्योंकि ये मनुष्य देह इतना महत्वपूर्ण है, इतना मूल्यवान है, क्योंकि इसी एक देह में हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो एक ऐसे सद्गुरु को ढूंढ निकाले जो उसे भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताएगा। और शिष्य के क्या गुण और लक्षण होने चाहिए? जिज्ञासु श्रेयः उत्तमम्। शिष्य को जिज्ञासु होना चाहिए, परंतु संसारी बातों के लिए जिज्ञासु नहीं, दिव्य बातों के लिए जिज्ञासु होना चाहिए। जिन चीजों से वास्तव में हमारा कल्याण होगा इसको श्रेय कहते हैं। केवल संसार में प्रगति करना इसे लोग अपना हित समझते हैं, परंतु ये प्रेयस है। जो दीर्घकाल की दृष्टि से सोचता है वो समझता है कि हमारा आध्यात्मिक हित ही वास्तव में हमारा कल्याण है। जो आदर्श शिष्य जो होता है सद्गुरु के पास आके संसारी बातें नहीं करता है, वो अपने आध्यात्मिक प्रगति के संबंध में प्रश्न करता है, बड़े नम्रता पूर्वक श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, परीक्षा करने के लिए नहीं, परंतु अपने संदेह का निवारण करने के लिए, अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए। और जब नारद जी ने देखा कि वाल्मीकि मुनि का भाव इतना सही है, उपयुक्त है, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। वो समझ पाए कि वाल्मीकि मुनि के मन में कोई विचार है। दोनों जब सामने आमने सामने बैठे तो नारद जी ने पूछा, मुनिवर क्या बात है, आपके मन में क्या विचार है? तो फिर वाल्मीकि मुनि ने अपने मन की बातें व्यक्त कर दी। वाल्मीकि जी काफी समय से एक विषय के ऊपर विचार कर रहे थे। वो जानना चाहते थे कि क्या इस दुनिया में ऐसे कोई आदर्श व्यक्ति है जो समस्त सद्गुणों से संपन्न है? क्या ऐसे संभव है कि यहां पृथ्वी लोक पर या इस भौतिक जगत में भी ऐसे कोई व्यक्ति मिल सके? और फिर वाल्मीकि मुनि ने 16 गुणों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नारद जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे कोई व्यक्ति हैं इस जगत में जो गुणवान है, जो वीरवान है, जो धर्मज्ञ है, जो कृतज्ञ है, जो सत्यवाक्य है, जो दृढ़ व्रत हैं, जो सही चरित्र से युक्त हैं, जो सबका हित चाहते हैं, जो बड़े विद्वान हैं, जो हर दृष्टि से समर्थ हैं, जो सबके लिए प्रिय हैं, जो आत्मवान हैं, जिन्होंने अपने क्रोध को वश में कर लिया है, जो सबके लिए बहुत आकर्षक हैं, जो बहुत सुंदर हैं अपने शरीर से भी, और उनके हृदय में किसी के प्रति कोई असूया या ईर्ष्या की भावना नहीं है, और जिनकी शक्ति जिनका साहस कभी कम नहीं होता कठिन से कठिन परिस्थिति में भी, तो ऐसे सद्गुणों से युक्त कोई व्यक्ति है क्या? मैं जानना चाहता हूं हे मुनिवर। ऐसे वाल्मीकि मुनि ने 16 गुणों का उल्लेख किया। और जब हम इन 16 गुणों के बारे में विचार करते हैं तो इनमें से हर एक गुण बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि इनमें से कोई एक गुण भी किसी के अंदर हो पर्याप्त मात्रा में तो हम समझेंगे कि यह व्यक्ति विशेष है। परंतु वाल्मीकि जी का प्रश्न है कि क्या ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनके अंदर परिपूर्णता में ये 16 के 16 गुण विद्यमान हैं? तो ऐसे प्रतीत हो सकता है हमारे मन में कि ये तो संभव नहीं है। जिस प्रकार से भगवान के गुणों का उल्लेख करना, उनका वर्णन करना, उनकी गणना करना, उनकी सीमाओं तक पहुंचने का प्रयास करना ये संभव नहीं है, तो ठीक उसी प्रकार से ऐसे समस्त गुणों से युक्त कोई व्यक्ति को ढूंढ निकालना इस जगत में बहुत मुश्किल है। नारद मुनि ने जब यह प्रश्न सुना उनको बड़ी प्रसन्नता हुई मन में। वो कहने लगे कि हे वाल्मीकि जी, ऐसे लगता है कि आपने काफी सोचा है इस विषय के बारे में। ये प्रश्न आपने काफी सोच समझकर किया है, काफी चिंतन मनन इस विषय के ऊपर आप करते आए हैं। ठीक है, मैं भी थोड़ा विचार करके उत्तर देता हूं। वैसे नारद मुनि को कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं थी, तुरंत उनके मन में उस व्यक्ति का नाम तो आया ही जिनके अंदर ये सारे सद्गुण विद्यमान हैं। परंतु नारद मुनि ने जैसे ही इन गुणों का वर्णन सुना, उनको राम का नाम याद आया, और जैसे ही राम का स्मरण किया नारद मुनि ने, तो आनंद से उनका हृदय भर गया और इतने भाव विभोर हो गए कि तुरंत उत्तर नहीं दे पाए। इसलिए उन्होंने कहा कि हम थोड़ी देर में अब दे रहे हैं उत्तर। अपने को संभाल लिया नारद मुनि ने और फिर आगे उत्तर देना आरंभ किया। तो जब भगवान के भक्तों को भगवान का याद दिलाया जाता है, वो भगवान का स्मरण करते हैं, तो उनको बड़ा आनंद आता है। जिस वस्तु से हमारा प्रेम होता है, जिस व्यक्ति से हमारा प्रेम होता है, यदि उसका नाम लिया जाए तो तुरंत हमारे मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती है। ठीक उसी प्रकार से भगवान के भक्तों के लिए भगवान ही तो प्रिय है, और यदि भगवान के संबंध में कहीं भी कोई विषय निकलता हो तो भक्तों को बड़ी प्रसन्नता होती है, और यदि भगवान को छोड़कर कोई अन्य विषय की चर्चा होती है तो भक्तों को अच्छा नहीं लगता। भक्त उस स्थान को छोड़ के जाना पसंद करते हैं। तो भक्त की पहचान ही यही है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मच्छित्ता मद्गत प्राणा बोधयंतस परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। वो कहने लगे, कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से कि हे अर्जुन, मेरे भक्तों की पहचान क्या है मैं बताता हूं। जो अपने चित्त में केवल मेरा स्मरण करते हैं, जिन्होंने मुझे अपना प्राण धन बना लिया है, और जो परस्पर केवल मेरे बारे में चिंतन मनन करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, अन्य किसी विषय के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, और अन्य भक्तों के साथ मिलकर मेरी कथाओं में आनंद लेते हैं, कोई दूसरी चीज से मैं आनंद नहीं लेते हैं, ये मेरे भक्त हैं। तो नारद मुनि तो अच्छी तरह से जानते थे कि भगवान श्री राम के अलावा ऐसे भला कौन व्यक्ति हो सकता है जो ऐसे सद्गुणों से संपन्न हो, परिपूर्णता में। फिर अपने आप को संभाल के नारद मुनि ने उत्तर दिया वाल्मीकि मुनि को कि मुनिवर, हाँ ऐसे व्यक्ति हैं, और वो हैं सूर्यवंश में राजा इक्ष्वाकु के वंशज, जो कोसल राज्य के राजा हैं, जिनका नाम है राम। वैसे जितने भी इस पृथ्वीलोक में क्षत्रिय हैं, वो उनके दो वंश हैं, एक है सूर्यवंश और दूसरा है चंद्रवंश। चंद्रवंश है जो सोमदेव से आरंभ होता है, और ऐसे सोमवंश में श्री कृष्ण प्रकट हुए, और दूसरा है सूर्यवंश जो सूर्यदेव विवस्वान से आरंभ होता है, ऐसे सूर्यवंश में भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए। वैसे देखा जाए तो जब कोई व्यक्ति किसी बड़े घर में, जो बहुत प्रसिद्ध घराना है, उसमें जन्म लेते हैं, तो ये कहा जाता है कि अच्छा ये फलाने परिवार का व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति का मान बढ़ जाता है क्योंकि उसका संबंध उस बड़े परिवार से होता है। परंतु श्री कृष्ण और श्री राम तो भगवान है, उनसे बड़ा व्यक्ति कौन हो सकता है? तो सोमवंश की ख्याति बढ़ती है इसलिए कि श्री कृष्ण सोमवंश में प्रकट हुए। ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण की ख्याति बढ़ती है क्योंकि वो सोमवंश में प्रकट हुए, सोमवंश प्रसिद्ध हो गया है। उसी प्रकार से श्री राम ने ऐसी कृपा की सूर्यवंश के ऊपर कि वो सूर्यवंश में प्रकट हुए, इसलिए वो सूर्यवंशी राजा कहलाते हैं। सूर्यवंश में अनेक बड़े बड़े राजा हुए। श्री रामचंद्र के पिता थे दशरथ महाराज, दशरथ महाराज के पिता थे राजा अज, राजा अज के पिता थे प्रसिद्ध राजा रघु, और इसलिए श्री रामचंद्र को कभी कभी रघुवीर कहा जाता है, रघुनंदन कहा जाता है, रघुवंशी कहा जाता है। महाराज रघु के पिता थे दीर्घबाहु, उनके पिता थे महाराज खटवांग, ऐसे पीछे चलते चलते राजा इक्ष्वाकु, और फिर सूर्यदेव, मनु, विवस्वान इत्यादि। तो ये है श्री रामचंद्र की पहचान भौतिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से। परंतु श्री राम तो हैं भगवान ही, उनकी पहचान किसी वंश से नहीं की जानी चाहिए। परंतु क्योंकि भगवान ने अवतार इस प्रकार से लिया है इसलिए सूर्य वंश का गौरव बढ़ गया है। जैसे जिस स्थान में चंदन के पेड़ होते हैं वो स्थान सुगंधित हो जाता है, तो मलय पर्वत इसलिए प्रसिद्ध है कि वहां पे चंदन है। ठीक उसी प्रकार से सूर्यवंश आज प्रसिद्ध है क्योंकि श्री राम इस वंश में प्रकट हुए थे। तो फिर नारद जी आगे बताने लगे कि हे वाल्मीकि जी, आपका प्रश्न बड़ा उपयुक्त है, बड़ा अच्छा है। ऐसे सद्गुणों से संपन्न श्री राम हैं और आपने जिन गुणों का उल्लेख किया, श्री राम के अंदर और भी इतने सारे गुण हैं। और भी नारद जी श्री राम का गुणगान करने लगे, अनेक अन्य गुणों का भी वर्णन करने लगे, क्योंकि भगवान राम के गुणों का कोई अंत नहीं है। बड़े आनंद से श्री राम अपनी व्याख्या करते रहे, आनंद से वाल्मीकि मुनि इस वर्णन को सुनते रहे। तो आइए संक्षेप में देखते हैं कि श्री राम के ऐसे गुण क्यों हैं, इन गुणों का मतलब क्या है। सर्वप्रथम वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछा था कि गुणवान व्यक्ति कौन है। हाँ, आजकल लोग केवल धनवान बनना चाहते हैं, लोग गुणवान नहीं बनना चाहते। परंतु श्री राम समस्त गुणों से युक्त हैं, और विशेष करके गुणवान शब्द का तात्पर्य है सौशील्य, जो भेदभाव न करके सबसे प्रेम करता है, सबसे निकट का संबंध बनाए रखता है। हालांकि उनका जन्म एक ऊंचे सूर्यवंशी परिवार में हुआ, वो एक क्षत्रिय थे, फिर भी निषादों के निषाद गुह से बड़े प्रेम का संबंध स्थापित कर लिया, जो कि एक भौतिक दृष्टि से नीच जाति मानी जाती है। उन्होंने वानरों में से सुग्रीव जैसे व्यक्ति से प्रेम का संबंध स्थापित किया। वानर योनि तो मनुष्य योनि भी नहीं है। साथ साथ में उन्होंने विभीषण जैसे राक्षस योनि में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति से भी प्रेम का संबंध स्थापित किया। उन्होंने कभी विचार नहीं किया कि मैं इतना बड़ा राजा हूं, मैं स्वयं भगवान हूं, मैं सूर्यवंशी हूं इत्यादि। तो ये सौशील्य की भावना, ये गुण होने के कारण श्री राम ही गुणवान है। साथ साथ में वो वीरवान भी है, सर्वशक्तिशाली है, उनका सामना कोई नहीं कर सकता है। जब दंडकारण्य में श्री राम, श्री लक्ष्मण और सीता देवी निवास कर रहे थे तो वहां शूर्पणखा नामक एक राक्षसी आई, जो कि रावण की छोटी बहन थी। वैसे शूर्पणखा का विवाह हो चुका था, परंतु युद्ध में गलती से रावण ने शूर्पणखा के पति की हत्या कर दी थी और प्रायश्चित करना चाहते थे। रावण को पता नहीं चला कि क्या किया जाए, तो उसने शूर्पणखा को मुक्त कर दिया, कहा कि ठीक है, तुम बिना कोई रक्षक के इधर उधर जा सकते हो, भ्रमण कर सकते हो। और शूर्पणखा इधर उधर भ्रमण करती रही, और जब श्री राम और लक्ष्मण के पास आई तो दोनों राम और लक्ष्मण ने शूर्पणखा के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, बल्कि शूर्पणखा के नाक और कानों को काट दिए। शूर्पणखा जोर जोर से चीखते हुए, रोते हुए, क्रोधित होकर रावण के पास गईं, रावण को ललकारने लगी, कोसती रही कि तुम्हारे बहन के साथ ऐसे हुआ है और तुम चुपचाप यहां पर बैठे हो लंका में। रावण ने पूछा कि बात क्या है। जब पता चला तो रावण ने तुरंत अपने सेनापतियों को भेजा दंडकारण्य में, त्रिशिर, खर, दूषण जैसे महान योद्धाओं को रावण ने भेजा, और उनके साथ अनेक ऐसे राक्षस सैनिक थे, पूरे 14,000 राक्षस आए। जब श्री राम ने देखा कि 14,000 राक्षस यहां पे एक साथ में युद्ध करने के लिए आए हैं, तो राम ने अपना धनुष बाण तैयार कर लिया और लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, आप सीता देवी को जरा अंदर गुफे में ले जाना और वहां पे बाहर खड़े रहना और केवल सीता देवी की रक्षा करना, और मैं यहां इन राक्षसों से निपट लूंगा। सीता देवी को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं। तो श्री राम अकेले वहां खड़े रहे और पवन की गति से भी तेज उनके तीर चलते रहे, और केवल 2 घंटे की अवधि में उन्होंने बड़े आसानी से उन 14,000 राक्षसों का वध कर दिया, जो कि बहुत शक्तिशाली थे। तो ये है वीर्यवान। आगे चल के तो श्री रामचंद्र ने, और इसके पहले भी उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया था, उन्होंने अपने अतुलनीय शक्ति का प्रदर्शन किया था, इसलिए वीरवान तो राम है ही। साथ साथ में धर्मज्ञ, जो धर्म के सिद्धांतों को जानते हैं, जो धर्म परायण है, तो श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है। धर्म के अनुसार कैसी मर्यादा होनी चाहिए, ये श्री रामचंद्र ने दिखाया है सारे विश्व को। एक पुत्र का कर्तव्य कैसे होता है, एक पति का कर्तव्य कैसे होता है, एक भाई का कर्तव्य कैसे होता है, एक राजा और क्षत्रिय का कर्तव्य कैसे होता है, एक आदर्श मनुष्य का कर्तव्य कैसे होता है, एक आदर्श दोस्त का कर्तव्य कैसे होता है, इन सब चीजों को भगवान श्री रामचंद्र ने अपने उदाहरण से दिखलाया है हम सबके लिए, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। साथ साथ में वो कृतज्ञ हैं। साधारण भाषा में जब हम कृतज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं तो अभिप्राय ये होता है कि किसी ने यदि हमें कोई मदद किया है तो हम उसके प्रति एक अनुकूल भाव रखते हैं कि हाँ इन्होंने कठिनाई के समय मेरी मदद की। केवल इतना होना वास्तव में कृतज्ञ नहीं है। जब श्री राम के लिए शब्द कृतज्ञ का प्रयोग किया जाता है तो केवल इतना नहीं है, क्योंकि ये तो साधारण व्यक्तियों में भी इस भौतिक सृष्टि में पाया जाता है। हाँ, आजकल ये चीज भी कम पाया जाता है। यदि हम किसी को मदद करते हैं तो वो भूल जाते हैं, परंतु जब श्री राम के संदर्भ में ये कृतज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका तात्पर्य और गहरा है। इसका मतलब है कि जब श्री राम की सेवा कोई करते हैं, भले वो थोड़ी भी सेवा क्यों ना हो, तो भगवान उसके प्रति बहुत कृतज्ञ रहते हैं। जैसे जब सेतु बांधने का समय आया तो वानर सेना में से हर एक वानर, हर एक भालू बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पहाड़, पेड़ आदि उखाड़ के समुद्र में फेंके जा रहे थे। उधर एक गिलहरी थी, गिलहरी अपने छोटे से पांव से केवल रेती के कण मात्र उस सेतु के बांधने के लिए डाल रही थी, और श्री रामचंद्र ने उस गिलहरी के भी सेवा को स्वीकार किया। जब हनुमान ने कहा कि ऐसे छोटे कणों से क्या होगा, तो श्री रामचंद्र ने कहा कि नहीं, वो अपने क्षमता के अनुसार वो प्रयास कर रही है और तुम अपने क्षमता के अनुसार कर रहे हो हनुमान, इसलिए तुम दोनों की सेवा जो है वो बराबर की है। तो ये है श्री राम, छोटी से सेवा को भी बहुत बड़ा मानते हैं। भगवान का स्वभाव ये होता है। हमें भगवान के चरित्र से सीखना चाहिए। यदि हमारे प्रति कोई छोटी सी भी कुछ भलाई करता है, छोटा बहुत कम भी मदद करता है, तो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए उस बात को। तो भगवान श्री राम ने दिखाया कि कैसे कोई हमारी सेवा करता है तो कैसे हमें कृतज्ञ होना चाहिए। और इतना ही नहीं, यदि कोई हमारे प्रति कोई बुरा करता है तो जो कृतज्ञ व्यक्ति होता है उसे गंभीरता से नहीं लेता है। कृतज्ञ का एक दूसरा अभिप्राय है, और साथ साथ श्री राम को इसलिए कृतज्ञ कहा गया है कि जब वो किसी की सेवा करते हैं, वो दूसरे आदमी स्वीकार करते हैं श्री राम की छोटी सी सेवा, तो भगवान राम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए श्री राम पूरी तरह से कृतज्ञ हैं। साथ साथ भगवान श्री राम सत्य वाक्य भी हैं, सत्य वचनी हैं। कल हम चर्चा कर चुके हैं कि राम नाम सत्य है। भगवान श्री राम का नाम, राम का चरित्र, राम का यश, राम के गुण, राम की लीलाएं, राम का धाम, राम के भक्त, ये सब सत्य हैं। तो वो सत्य वचनी रहे, अटल रहे। कुल गुरु वशिष्ठ मुनि ने बहुत प्रयास किया श्री राम को कहने के लिए। अनेक साधुओं ने, ब्राह्मणों ने, वरिष्ठ नागरिकों ने, बल्कि सारी अयोध्या की नगरी आई श्री राम के पास कि आप अपने इस निश्चय को बदलिए, हम सब आपके साथ जंगल में जाएंगे और जंगल के भीतर एक अयोध्या बनाएंगे और भरत को यहां अकेले रहने दीजिए अयोध्या में, कैकेयी और मंथरा के साथ। तो अयोध्या में केवल कैकेयी, मंथरा और भरत रहेंगे और हम सब आपके साथ जंगल में जाएंगे और जंगल में एक नया अयोध्या बनाएंगे। परंतु श्री राम ने बात नहीं मानी, क्योंकि ऐसा करने से जो उद्देश्य था उनके वनवास का, वो पूर्ण नहीं होता। यहां तक कि जब श्री रामचंद्र चित्रकूट गए तो वहां पर भरत आए। भरत ने जब पहली बार सुना कि क्या हुआ है, मेरी माता कैकेयी ने किस प्रकार का वर मांगा है मेरे पिता महाराज दशरथ से, बड़े क्रोधित हो गए, अपने मां की हत्या करने के लिए भी तैयार हो गए। परंतु किसी न किसी तरह से अपने आप को उन्होंने रोक लिया, लेकिन सीधे वो श्री राम का पीछा करते हुए चित्रकूट पहुंचे। वहां पर श्री रामचंद्र के चरणों में उन्होंने निवेदन किया कि आप आइए वापस, मुझे राज्य में कोई रुचि नहीं है, मैं केवल आपकी सेवा करना चाहता हूं, आप राजगद्दी को स्वीकार कीजिएगा। तो राम ने अपने वचन को तोड़ा नहीं, उन्होंने भरत को वापस भेजा। तो ऐसे श्री राम सत्य वाक्य हैं, साथ साथ में दृढ़ व्रत हैं। जब वो कोई व्रत लेते हैं तो व्रत को भी तोड़ते नहीं हैं, और विशेष करके सबसे महत्वपूर्ण व्रत भगवान का है कि वो अपने भक्तों को रक्षा प्रदान करते हैं। जब विभीषण रावण के द्वारा बहिष्कृत किए गए लंका से, जब रावण ने विभीषण के अपशब्द कहे कि तुम तो मेरे भाई हो परंतु लगता है वास्तव में भाई रूप में मेरे शत्रु हो, तुम वास्तव में मेरे विनाश के लिए तुम आए हो, तो चले जाओ यहां से, तो बड़े दुखी होकर विभीषण लंका से निकल पड़े और समुद्र के उस पार तट पे श्री रामचंद्र अपनी वानर सेना से के संग थे। उन्होंने श्री रामचंद्र का शरण ग्रहण किया। वहां वानरों के बीच में वाद उत्पन्न हुआ कि विभीषण के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं। कोई कहने लगे कि ये तो राक्षस हैं, राक्षस योनि के किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, अब तो ये ऐसे कह रहा है, हो सकता है कल इसका मन बदल जाए। कोई और कहने लगे कि हो सकता है ये रावण का जासूस है, जासूसी करने के लिए यहां पर आया है। ऐसे अनेक मत सामने रखे गए। तब श्री राम ने कहा कि नहीं, मैं विभीषण को स्वीकार करूंगा, क्योंकि विभीषण ने मेरे शरणों में आश्रय लिया है, जो भी मेरे शरणागत आते हैं मैं उनकी रक्षा करूंगा, ये मैंने व्रत लिया है और इस व्रत को मैं तोड़ नहीं सकता। सकृत एव प्रपन्नो यह तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वदा तस्मै ददाम ये तद्व्रतम मम। श्री राम ने ये महत्वपूर्ण वचन कहे कि यदि एक बार भी कोई व्यक्ति मेरे शरण में आता है, सकृत एव एक बार भी प्रपन्न यह शरणागत होकर मेरे पास आता है और क्या कहता है, तव अस्मि इति याचते, ऐसी याचना करता है कि हे प्रभु आज से मैं आपका हूं, तव अस्मि, तो फिर मैं उस व्यक्ति को मेरे हृदय से स्वीकार करता हूं। अभयम सर्वदा तस्मै ददामि, और ऐसे व्यक्ति को मैं तुरंत ही निर्भयता प्रदान करता हूं। एतम व्रतम मम, और ये मेरा व्रत है। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी ऐसा ही कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, सब जगह जाके घोषणा करो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होगा। तो ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। प्रतिज्ञा तव गोविंद, हे गोविंद आपकी प्रतिज्ञा है ये, नमे भक्त प्रणश्यति इति संस्मृत्य संस्मृत्य धारामि प्राणानम हम। द्रौपदी देवी प्रार्थना करती हैं श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, आपने वचन दिया है कि आप अपने भक्तों की रक्षा करेंगे, बस केवल इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपने शरीर में प्राण को बनाए रखी हूं। तो भगवान व्रत लेते हैं कि वो उनकी भक्तों की रक्षा करेंगे, और श्री रामचंद्र के जीवनी से, उनके चरित्र से, उनकी लीलाओं से हम जान सकते हैं कि कैसे वो अपने व्रत में दृढ़ होते हैं, साथ साथ उनका चरित्र बिल्कुल आदर्श है, कोई उनके चरित्र पे कोई कलंक नहीं लगा सकता है, इसलिए वो आदर्श व्यक्ति हैं, आदर्श गृहस्थ हैं, आदर्श सब कुछ है, हर दृष्टि से उनका चरित्र बिल्कुल सही है। साथ साथ में सर्वभूतेषु को हितः, सबके हितैषी हैं, यहाँ तक कि कोई छोटे हो कोई बड़े हो कोई भेदभाव नहीं करते हैं। श्री राम पूरी तरह से विद्वान हैं, समर्थ हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो श्री राम नहीं कर सकते। ये समर्थ शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है, समर्थ शब्द का तात्पर्य है कि ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, और वास्तव में श्री रामचंद्र कुछ भी कर सकते हैं। केवल एक रावण का वध करना, एक छोटे से पुल को बांधना, इससे हम भगवान श्री राम की शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकते। ये तो भगवान के अपार शक्ति के लेश मात्र, प्रदर्शन मात्र हैं, परंतु भगवान अपने लीला करते समय अवश्य अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हैं। और भगवान का चरित्र, भगवान का व्यवहार, भगवान का रहन सहन, उनकी बोलचाल इतनी मधुर है कि सभी लोग उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जब श्री रामचंद्र दंडकारण्य में थे तो वहाँ के जो ऋषि हैं वो भी उनके सुंदर रूप से द्युतिमान, इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने भी चाहा कि हम भी आपको श्रृंगार रस में सेवा करना चाहते हैं। तो श्री राम ने उस समय उत्तर दिया कि इस समय आपका देह तो पुरुष देह है, इसलिए ये तो मैं सेवा स्वीकार नहीं कर सकता, और लेकिन अगली बार जब मैं आऊंगा कृष्ण अवतार में, द्वापर युग में, उस समय आप गोपी बन के आएंगे वृंदावन में, और उस समय मैं आपके श्रृंगार रस में आपकी सेवा में स्वीकार करूंगा। तो दंडकारण्य में रहने वाले अनेक ऋषियों का जन्म गोपियों के गर्भ में हुआ वृंदावन में, द्वापर युग में, और ऐसे गोपियों को ऋषिचारी गोपी कहते हैं। साथ साथ में भगवान श्री रामचंद्र अनसूयकः हैं, अर्थात उनके हृदय में कोई असूया या ईर्ष्या या द्वेष की भावना तनिक भी नहीं है। अब देखिए श्री रामचंद्र के वनवास में जाने के कारण कौन थे? माता कैकेयी। श्री रामचंद्र को युवराज घोषित किया गया था और बहुत बड़ा अनुष्ठान संपन्न किए जाने वाला था, और ठीक उसी दिन कैकेयी देवी ने ऐसे एक षड्यंत्र रचाया जिसके कारण श्री रामचंद्र को वनवास में जाना पड़ा 14 साल। बस देखिए यदि किसी साधारण व्यक्ति के साथ ऐसे हुआ होता तो भले वो अपने पिता की आज्ञा का पालन कर भी लेता, परंतु हृदय में बहुत सी बुरी भावनाएं रहती, बहुत द्वेष रहता कि मेरी विमाता ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। परंतु श्री राम के हृदय में माता कैकेयी के प्रति स्नेह के अलावा और कुछ नहीं रहा। एक बार भी उन्होंने अपनी माता कैकेयी के प्रति बुरे शब्द की बात तो दूर है, बुरे विचार भी नहीं रखे मन में। ये है श्री रामचंद्र। तो ऐसे भगवान श्री रामचंद्र से हमें प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए कि जब हमारे प्रति कोई बुरा काम करते हैं, कोई हमारा कोई अपमान करते हैं, कोई नुकसान हमें पहुंचाते हैं, तो उनके प्रति हमें हृदय में बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि ये वास्तव में हमारे भाग्य है, ये भगवान की कृपा है, ये व्यक्ति तो केवल हमारे प्रारब्ध के लिए एक निमित्त मात्र है, तो हम इनको क्यों दोषी ठहराएंगे? दोषी तो हम हैं, क्योंकि हमने ऐसे कोई कर्म किए होंगे जिसके कारण हमारे प्रति कोई ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो हमें हमारे तथाकथित दुर्भाग्य के लिए अपने आप को ही दोषी समझना चाहिए, किसी दूसरे को दोषी नहीं समझना चाहिए और दूसरों के प्रति कभी बुरी भावना मन में नहीं रखनी चाहिए और समझना चाहिए कि यदि हमारे प्रति कोई बुरा करता भी है तो वो उस व्यक्ति की समस्या है, वो मेरी समस्या नहीं है। उसे अपने कर्मों का जवाब भगवान से करना होगा मृत्यु के समय, इसलिए वो उसकी समस्या है। परंतु जब मैं उस बात को मेरी समस्या समझ लेता हूं तो फिर मेरा मानसिक तनाव आरंभ हो जाता है। इसलिए श्री रामचंद्र से हमें सीख लेना चाहिए कि कैसे हमें अनसूयकह होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम बिल्कुल अनसूय हो, तुम्हारे हृदय में कोई ईर्ष्या नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यह भगवद गीता का उपदेश दे रहा हूं। यदि कोई ईर्ष्यालु है तो उसके हृदय में वो अशुद्धता होगी जिसके कारण भगवान के लिए वो एक उपयुक्त निवास स्थान नहीं हो पाएगा। भगवान एक स्वच्छ स्थान में बैठना पसंद करते हैं। जब हमारे हृदय में द्वेष, ईर्ष्या, जलन आदि ऐसी भावनाएं होती हैं तो भगवान कैसे भले हमारे हृदय में निवास कर सकते हैं। इसलिए अन्यों के प्रति हृदय से बुरी भावना को हमें हटा लेना चाहिए निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण करने से। और साथ साथ भगवान श्री राम हर परिस्थिति में अपने साहस को, अपने शक्ति को प्रकट करने में हिचकिचाते नहीं हैं, पूरी तरह से वो शक्तिशाली हैं हर परिस्थिति में। जब भगवान अपने बाल लीला को भी प्रदर्शित करते हैं तब भी वो शक्तिमान है, और जब वो लंका जाते हैं, लंका में युद्ध करते हैं, तब भी वो शक्तिमान है। जब एक साधारण मनुष्य का जन्म होता है तो बाल्यावस्था में बच्चा बहुत कोमल होता है, कमजोर होता है, उसकी बुद्धि भी अल्प होती है, परंतु जैसे जैसे शरीर और बुद्धि का विकास होता है उम्र के साथ साथ, वैसे वैसे आदमी शक्तिशाली और बुद्धिमान होते जाता है। और दोबारा जब बुढ़ापा आता है तो फिर बुद्धि और शक्ति का घटन होने लगता है, परंतु भगवान के साथ ऐसे नहीं होता। जब भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण इन्होंने अपने बाल लीलाओं को प्रदर्शित किए तो केवल मनुष्य समाज का नकल किया मात्र उन्होंने, सबका हृदय आकर्षित करने के लिए, परंतु हर अवस्था में वो पूर्ण शक्तिमान भगवान ही रहे। ऐसे वाल्मीकि जी के जो प्रश्न थे पूरी तरह से नारद मुनि ने उनका उत्तर दिया और अनेक और गुणों का भी उल्लेख किया जो कि वाल्मीकि मुनि ने नहीं की थी। और फिर नारद जी वहां से उठ पड़े। नारद जी ने ऐसे भी गुणों का उल्लेख किया था जो उनके शारीरिक सौंदर्य से संबंधित थे, जो श्री राम के आचार या व्यवहार से संबंधित थे और श्री राम के चरित्र से संबंधित थे। और फिर श्री नारद जी वहां से उठ पड़े और अपने विश्व भ्रमण के लिए, सारे ब्रह्मांड के भ्रमण के लिए आगे चलते रहे, अपने वीणा को साथ में लेके नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करते हुए निकल पड़े। उधर वाल्मीकि मुनि बड़े सोच विचार में रह गए और नारद जी ने उस समय जाने के पहले उसी श्री रामचंद्र के बारे में संक्षेप में रामायण की कथा कर ली। तो नारद जी ने संक्षिप्त रामायण वाल्मीकि मुनि को सुनाया और वो संक्षिप्त रामायण क्या है हम एक 5-10 मिनट में सुनेंगे। इसके पहले वही श्री रामचंद्र जिनका गुणगान वाल्मीकि मुनि और नारद जी ने किया है, उनके बारे में हम एक भजन गाते हैं। वही भगवान श्री हरि जिन्होंने अनेक अवतार लिए हैं, उनके अवतारों की कोई गणना नहीं कर सकता, परंतु श्रील जयदेव गोस्वामी जी ने, जो बहुत बड़े कवि, दार्शनिक और भक्त रहे हैं, उन्होंने भगवान के प्रमुख 10 अवतारों का वर्णन किया है, तो इसके बारे में हम एक भजन गाएंगे।